मेरा नाम रविशंकर है। मैं BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं आज गबन शीर्षक से जो उपन्यास जिनको कि प्रेमचंद ने लिखा है का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। बरसात के दिन हैं, सावन का महीना है, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई है, रह रह कर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई है। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियाँ भी झूल रही है और उनकी माताएँ भी, दो चार झूल रही हैं, दो चार झूला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियाँ भी जाग उठती है। ये फुहारे मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती है, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती है। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं, धानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिरसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिरसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकाल कर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लैस और मोटे रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़ियाँ और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज़ ली, किसी ने कोई चीज़। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज़ पसंद की जो उन चमकती हुई चीज़ों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूँगी। माँ ने बिरसाती से पूछा, बाबा यह हार कितने का है? बिरसाती ने हार को रुमाल से पोछते हुए कहा, खरीद तो बस 20 आने की है, मालकिन जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिरसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की, हार ले लिया गया। बालिका की के आनंद की सीमा न थी, शायद हीरों के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जालपा था, माता का नाम मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। वह किसान न थे पर खेती करते थे। वह जमींदार न थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार न थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उनकी धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गायें भैंसें। वेतन कुल 500 रुपये पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफ़ी न होता था। उनकी आय के और कौन कौन से मार्ग थे यह कौन जानता है। जालपा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे पर इस समय वह अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए, तो वह बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वह मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे, फूंक फूंक कर पांव रखते थे, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जलपा के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में यह विचार ही नहीं आता था कि जलपा किसी और चीज़ से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़ियाँ और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जलपा आभूषण से खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिरसाती से लिया था अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्यौहार पड़ता तो वह उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही न था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाए। मानकी को यह साध बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जालपा को अब अपना हार अच्छा न लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगी बेटी। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्द। बाप के शब्दों से जालपा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी मुझे भी अपना हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जालपा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने सुनकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। यह हार 600 में बना है, इतने रुपये जमा कर लेना। दीनदयाल के लिए आसान न था, ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं यह हार बनने की नौबत आई थी। जीवन में फिर कभी इतने रुपये आएंगे इसमें उन्हें संदेह था। जालपा ला जाकर भाग गई। पर यह शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब उतनी भयंकर न थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहाँ के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीज़ लोग उन्हें नहीं बनवा सकते वह वहाँ से आएगी। लेकिन ससुराल से न आए तो उसके सामने तीन लड़कियों के विवाह हो चुके थे, किसी की ससुराल से चंद्रहार न आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी न आया तो उसने सोचा, तो क्या माता जी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते खेलते 7 वर्ष कट गए और वह दिन भी आ गया जब उसकी चिर संचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और सहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते पर कभी एक पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी नहीं थी कि बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे, शायद इसलिए कि वह अपनी आँखों से इसके कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को कुवेशनों से पंजे में फंसते। उन्हें कोई मिसाल न मिलती थी जिससे रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है, यह बात वह कभी नहीं भूलते। इस जमाने में 50 रुपये की भूगुत ही क्या, 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहने को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता, पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो, लेकिन रमानाथ ने इतनी लगन न थी। इधर दो साल से वह बिल्कुल बेकार था, शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था, किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए, किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली, कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 दिनों में 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का साध हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जलपा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे, उनके पास न रुपये थे और न एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत, पर रामेश्वरी की त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। रामेश्वरी बरसों से पुत्रवधू के लिए तड़प रही थी, जो उसके सामने बहुएं बनकर आई वे आज पोते खिला रही है। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता, वह कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आँखें सी मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा, न धन ही है न जायदाद, लड़के पर कौन रिझता है, लोग तो धन देखते हैं। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजयी हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपये की भी तो फिक्र है, 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए, जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा, यह बोझ मेरे मान का नहीं है। रामेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर न हुआ। बोली, वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊँगा नहीं, तुम्हारे मांगने की जरूरत ही न पड़ेगी, वह खुद ही देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए तो 100 दीनदयाल पोढ़े आदमी हैं, और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात न सूझी, केवल यही कहा, वह चाहे लाख दे दें चाहे एक न दें, मैं न कहूँगा कि दो, न कहूँगा कि मत दो। कर्ज मैं लेना नहीं चाहता, और लूँ तो दूंगा किसके घर से। रामेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वह टीके में 1,000 से कम न देंगे। तुम्हारे टिम टम के लिए इतना बहुत है। गहनों का प्रबंध किसी शराब से कर लेना। टीके में 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी न देंगे? वही रुपये सराफा को दे देना। 2-4 सौ बाकी रहे, वह धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई न कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले, उससे सभी द्वार बंद मिलेंगे। रामेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र सिर पर कैसे सवार हो गई थी। साल भर न बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आएगी तो उसकी आंखें भी खुलेगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा तभी तक यह कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय ही नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही साधन था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते, पर टेढ़ों के साथ टेढ़ा ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा समूह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें बसीभूत कर लिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके ही में दे आए, मानकी ने कहा। जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है, जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और सिल का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अलबत्ता उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका उसका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिसकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, बृहद रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है? धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने की उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ाव हो कि मंडप वाले देखकर फड़क उठें, सबकी आंखें खुल जाए। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला, सर्राफा को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए वह सप्ताह का वादा हुआ तो उससे कोई कई आपत्ति न की। सोचा, 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं? व्यापारी की लागत निकल आती है तो नफे का तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर चंद्रहार की कसर रह गई, जड़ाऊँ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो नहीं रहेगी। पर रामेश्वरी इस पर राजी नहीं हुई, बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधर के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। रामेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। रामेश्वरी, खून मुँह लग गया है क्या? दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, अगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। रामेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा, नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया, मगर दीनानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझें, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था, रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, न किसी से मित्रता थी और न किसी से मेलजोल। रमानाथ मिलनसार युवक था, उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर, आतिशबाजियां बनवाई तो अब्बल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अब्बल दर्जे का, वाजे गाजे भी अब्बल दर्जे के, दोयम या स्वयं का वहां जिक्र ही नहीं था। दयानाथ उसकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ न कह सकते थे, क्या कहते? नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती है। परात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास नहीं फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारथ। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धों धों पों पों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लोटपोट हो जाते थे। आतिशबाजी मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सन्न से ऊपर उठ जाती और आकाश में लाल, पीले, हरे, नीले कुमकुमे रंग से बिखर जाते, जब चरखियां छूटती और उनसे नाचते हुए मोर निकल आते, तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है। जालपा के लिए इन चीजों में लेशमात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह बर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छू मंतर हो गई। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात जनवास से चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाई, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गान होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ाव आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा जे हुई पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ाव देखने के लिए उत्सुक हुए उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी। कंठ सूखा जाता था। चढ़ाव आते ही प्यास भाग गई। दीन दयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मर्दों ने गहने बनवाए थे और औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर कम नहीं निकल जाए तो कुछ हार जाऊंगा। यह शेरदहा तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लें। यह भी 12 तोले से कम न होगा। वाह, कभी देखा भी है, 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंखें नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में यह आब कहाँ। चीज तो यह गुलबंद है, कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया है। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामान सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी। और सब गहनों के नाम कान में आते थे, चंद्रहार का नाम न आता था। उनकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की एक बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहराता हुआ पौधा जल गया। केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुदैव ने आज वह अवलंबन भी छीन लिया। उस निराशा के आवेग में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका बस चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है, जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदर बनाया है, मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाए जिसमें रुपये खर्च होते थे, उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनती थी तो इतने ही दामों के से इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी तीन सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझाया, जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता तूने बड़ी तपस्या की थी, ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साध पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नेत्रों से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, अब सब साध पूरी हो गई। इन शब्दों में कितना अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न लगा सके। तीनों कुतूहल से उसकी ओर ताकने लगे मानो उसका आशय उसकी समझ में न आया हो। बसंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादा बोली, चढ़ाव ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले फड़क उठें। बसंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह फेर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। सहजादी, एक चंद्रहार के न होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख न होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं, आँख हुई तो क्या, न हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से यह लालसा से भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, सहजादी को हंसी न आई, यह आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती ही बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि सब चीजों तो लाए चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो सहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जालपा को सहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। चजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। सहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी, मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खट्टा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं, जब तक कंगन न बने मैं नींद भर नहीं सोई। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार बनेगा। सहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना, 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया, सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय सहजादी की इन बातों से मानो जी उठा, वह रुंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बासंती मन ही मन सहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थी, पर सहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है, जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए, यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे, उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे न बने तो तुम्हें बुलवा ले, क्यों अब उठोगी किसी की सारी रात उपदेश ही करती रहोगी। सहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है। हाँ, खूब याद आई, क्यों जल्दी, तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। सहजादी, एक बार कहकर देखो तो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा, मुझसे तो न कहा जाएगा। सहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा, नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने सहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यही सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। सहजादी उठी पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। सहजादी, जब यह दोनों चुड़ैल बैठने भी दे मैं तो तुम्हारे गुर सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती है। सुन नहीं रही हो, मैं भी 20 की गांठ हूँ। बासंती, 20 की गांठ तो तू है ही। सहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई? बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? सहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं है। सहजादी, तो सूखे प्रेम तुम्ही को फले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहीं बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गई। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दिल दयाल ने खूब दिया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मिला सब नाच गाने तमाशे नेक चार में खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावे और तमाशे में इतने रुपये खर्च किए? इसकी ज़रूरत ही क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही तो कहते महाशय बड़े कृपण हैं, तो उतना सुन लेने में क्या हानि थी? मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठीका तो नहीं लिया था? यह सब रमा का दुस्साहस है, उसी ने सारे खर्च बढ़ा चढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया। और सब तकाजे तो 10 दिन तक टल भी सकते हैं, पर सर्राफा किसी तरह ना मानता। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सर्राफा आया, मगर यहाँ रुपये कहाँ थे? दयानाथ ने लल्लू चप्पू की आदत न थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने की खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपये 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सर्राफा भी एक ही घूटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने 3रे दिन बाकी रकम की चीज़ें लौटा देने का वादा किया, और यह भी उसकी सज्जनता ही थी। वह 3रा दिन भी आ गया और अब दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्यग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहा, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। रामेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से ठंडा हो रहा है, खाकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। रामेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तो कुछ नहीं खाया था। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपये थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया, बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। रामेश्वरी, बहू का हाल तो सुन चुके, फिर उससे ऐसी आशा रखते हो? उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना ही नहीं पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिल्लौरी हार गले में डाले हुए है। बहुएं बहुत देखी पर ऐसी बहू न देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता है कि कल की बहू उससे गहने छीन लिए जाए। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तो तुम जले पर नमक छिड़कती हो? बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो, महाजन को दे आती हूँ। बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है, गला कैसे छूटेगा? रामेश्वरी, बेटे का विवाह किया है, ठट्ठा नहीं, शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं। तुमने कोई नई बात नहीं की, खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यदेव हैं, पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली, बेटी के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, जब ही दोनों लड़के भी तो चल दिए। रामेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है, लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते हैं वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपये चुकता कर सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की अब वह आखिरी वक्त नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उसे पर्दा रखने की ज़रूरत ही क्या है, और पर्दा रह ही कई दिन सकता है, आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीज़ें लौटा दे तो काम बन जाए, तुम उनसे एक बार कहो तो। रामेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो कहा ना जाएगा। सहसा रमाना टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफ़ेद टेनिस शर्ट था, सफ़ेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति, पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उससे सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि रामेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इनसे क्यों नहीं सलाह लेते? रमा से, तुमने नाच तमाशे में 1200-1300 रुपये उड़ा दिए, बतलाओ सर्राफा को क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किल से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ है, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारे ही करतूत है। रामानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या खर्च किया? जो कुछ किया बाबूजी ने किया। हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रामानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उनकी अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टलनी चाहिए। सर्राफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपये के गहने उसे लौटा दिए जाएं। गहने लौटा देने में भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपये के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रामानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार न जाने से उसे कितना बुरा लगा था। प्रण कर लिया, जब तक चंद्रहार न बन जाएगा कोई गहना न पहनूंगी। रामेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रामानाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़ कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या है? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। रामानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जलपा से खूब जीत उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़ कर बातें की थी। जमींदारी है, उनसे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपये हैं, उनका सूद आता है। जलपा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लवाड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी, शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी नहीं कहा कि हम लखपति हैं। रामानाथ, तो आपने यही कब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे? आखिर यह सारा स्वांग अपनी धाक बैठाने के लिए किया था या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने से मांगना पड़ेगा, बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपये देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रामानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। रामेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सुझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलम्मे के गहने दे दिए जाएं। मगर तुरंत ही उन्हें ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है, खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद को जब मुलम्मा उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा, अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सूझता है, सारी स्थिति उसे समझा दी जाए, जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था कि जलपा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इसमें किरकिरी होती थी, फिर वह मुंह न दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपये क्या हुए, तो उसे क्या जवाब देगा? विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं होगा। आप क्या सर्राफ को 2-4-6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहें तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। रामेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी के सुलझाने का व्यवहार उन्हीं दोनों पर था। रामेश्वरी ने भी एक तरह से निश्चय कर लिया था, दयानाथ को झक मार कर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ हो और हम अपने नियमों का राग आलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वह आज न करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने में संकोच न होगा और यही वह न चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डिंगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि से पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जालपा के पिता 5 रुपये के नौकर थे, पर जालपा ने कभी अपने घर में झाड़ू न लगाई थी, कभी अपनी धोती न छांटी थी, अपना बिछावन न बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खोंच तक न सी थी। दयानाथ 50 रुपये पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए महरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों करना पड़ता था। जालपा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ही न पड़ा था। वह कई बार पति और सास से आश्चर्य सहित पूछ चुकी थी, क्या यहाँ कोई नौकर नहीं है? जालपा के घर दूध दही घी की कमी नहीं थी, यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर न था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था? घर का किराया 5 रुपया था, रामानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था, रामानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि एक दिन सारा भंडा फूट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होता, लेकिन वह इतनी जल्दी आएगा यह कौन जानता था। अगर उसने ये डींगे न मारी होती तो रामेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चित हो जाता, लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था, कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा न था जो आगे चलकर उसे उलझनों में न डाल देता, दलदल में न फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी, उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक न ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता, अपनी प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1,000 रुपया दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता, कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं? उससे 2-3 गहने मांग लेते, तुम चाहो तो ले सकते हो, हमारे लिए मुश्किल है, मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, न खुद मांगोगे न मुझे मांगने दोगे तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1,000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो, मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता, इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता, किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते, तुम ही अपनी माँ से पूछो। रामेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता था कि अपना आदमी चिंता में पड़ा रहे, मैं गहने पहने बैठी रहूं, नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते। एक एक करके सब निकल गए, विवाह में 5,000 से कम का चढ़ाव नहीं गया था, मगर 5-6 साल में सब स्वाहा हो गया, तब से एक छल्ला बनवाना भी न नसीब हुआ। दयाना जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा क्षोभ और अपनी निचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे उससे छिपकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और क्या, आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के बाद आहत कंठ से बोली, नहीं, मैं ऐसा न करने दूंगा, मैंने जाल कभी नहीं किया और न ही कभी करूंगा, वह भी अपनी बहू के साथ। छिह छिह, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए यह फरेब, कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो? समझते हो, वह तुम्हें दिल से क्या समझेगी, मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीजें ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी, व्यर्थ ही विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा था कि आसानी से जितना ले जा सकते उतना ही ले जाते, उस भोजन के क्या लाभ कि पेट में कीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपने कोई मार्ग निकाल लिया होगा। मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे सिर पर मुसीबतों की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं उन चीज़ों को कभी नहीं ले जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले। इतने पर भी केवल चंद्रहार न होने से वहाँ हाय तौबा मच गई। रामानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मची थी तो मलाल भी तो नहीं पूरा हुआ, मतलब भी तो नहीं पूरा हुआ। उधर बदनामी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटेहाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र नहीं करना ही पड़ेगा। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब न सुना गया तो उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक दो चार पत्र पत्रिकाएं न पढ़ लें, उन्हें खाना न हजम होता था। उसी सुरक्षित गढ़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा, पर जपला के पास न जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते थे। दोनों लड़के पढ़ते थे और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, बिशंभर का 9वां। दोनों रमा से थर थर काँपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता था, पर भाइयों को खेलते देखकर उसके हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटा किया करे, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाए। दयानाथ खुद लड़कों को कभी न मारते थे, अवसर मिलता तो उनके साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते देखकर उनकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। दो चार पेंच लड़ा देते, बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेलते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की परीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत न लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुमने भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ देखी, क्यों नहीं? जाकर 4 पैसे का माजून ले लो, दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आध सिर मिठाई भी लेते आना, यह रुपया लो। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जपला के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जपला खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी में सामने फैले हुए नगर के कलश, गुंबद और वृक्ष स्वप्न चित्रों से लगते थे। जलपा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था, मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चरपाई पर बैठ गया। जपला ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रमानाथ, बूझ जाओ तो जानू। जालपा हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रमानाथ, गलत। जालपा, नींद की गठरी होगी। रामानाथ, गलत। जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रामानाथ, ठीक, आज तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल स्पर्श से जालपा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर न दिया। इस बेस में पति की ओर ताकते हुए भी उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने के कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानी हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लासित नेत्रों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ, क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब न दे सकता था? मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जालपा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य न था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुनेर के पास खड़ा हो गया। प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उससे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार जी में आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा, जालपा की नज़रों से गिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नेत्रों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए और अम्मा जी से तुम्हारा बखान करने लगे, तो मैं सोचती थी तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे, तरह तरह के चित्र आते थे। रामानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब न दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बातें करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रामा ने कोई जवाब न दिया। जालपा, अजी वही जो रंग रूप में सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पे एक तिल था, तुमने उसकी ओर प्रेम से देखा। बेचारी लाज के मारे गड़ गई, मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं, सखियों ने उन्हें खूब चिढ़ाया, बेचारी रुआंसी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा, अच्छा अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर कहा, आज तो फुर्सत नहीं मिली। जालपा, जाओ, मैं तुमसे ना बोलूंगी, रोज हिले हवाले करते हो। अच्छा, कल ला दोगे ना? रामानाथ का कलेजा महसूस उठा। यह चंद्रहार के लिए इतनी विकल हो रही है, इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य उसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है। जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा भोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रामा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नेत्रों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो, क्या सवेरा हो गया? रमा, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमा, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। न जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फूटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। फिर दोनों सोए, एक उल्लास में डूबी, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया, केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता और फिर लेट जाता। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों की संदूचकी अलमारी में रखी हुई थी। रमा ने उसे उठा लिया और थरथर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छाट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबकाकर पूछा, कौन? रमा ने ओठ पर उंगली रखा, कहा, मैं हूँ, यह संदूचकी लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि यह आवेश में ऐसा कर रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठ गांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार्य न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आपका ही तो हुक्म था दयानाथ। झूठ कहते हो रमा, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न को ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे, कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्यों हो? संदूचकी मेरे पास संदूक में रखाओ और जाकर लेट जाओ, कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पीछे पिछले पहर ही की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा जी ही चरफाई पर बैठा जालपा चौक पड़ी उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चौक पड़ी? जालपा ने उधर उधर प्रसन्न नेत्रों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्या हो, कितनी रात अभी है? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है, क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकी उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़ा पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहें इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकी न थी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहने को वह बट्टे पर ही ले सकता था, बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? जाकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी, इन चीज़ों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजा कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश आता, 1500 रुपया में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भंडा फूट जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जालपा ने भी सोचा, जब माल ही नहीं मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहने से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसने आश्चर्य की कौन ऐसी बात थी, जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाती थी तो गहनों की ही चर्चा करती, तेरा दुल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहना लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उसे उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिल जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस पर बूढ़ी दादी, मानकी, घर की माहरीन, पड़ोसिन और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बिठाकर विदा करती। कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उन्हें वह चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई और तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बात सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा न थी। किसने कौन कौन गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले, जड़ाऊ है या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित आलोचना प्रत्यालोचना टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक इतना ग्राह्य हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा ज्यों की त्यों है, न कुछ खाती पीती है, न किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नेत्रों से शून्य आकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझा कर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोग सस्या न छोड़ी। अब उसे घर में किसी पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि रमा भी उदासीन रहती है। वह समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सब के सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते, जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात न टाल सकता, पर यह कुछ कहे भी उनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत न बैठे रहते। जब तक सारी चीज़ें न बनवा लेते, रात को नींद न आती। मुंह देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहे, जाएंगे तो अपनी अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वह रमा से केवल खींची ही नहीं रहती, वह कभी कुछ न पूछता तो दो चार जली कटी सुना देता। बेचारा अपना मुंह सा लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जल जाता था, जल जाता था। अगर वह जानता कि उन डिंगों का यह फल होगा तो वह जवान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानी उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कहे सैर सपाटे में करते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरे खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने प्रीता पर क्रोध आता। यह चाहते तो दो चार महीने में सब रुपये अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊँ पर यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग से सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी न जमा हो। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषण से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उनमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाने आ जाता तो वह अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। शतरंज की बदौलत उसके कितने अच्छे अच्छे आदमियों से परिचय था, लेकिन वह संकोच और डर के कारण किसी से अपनी स्थिति प्रकट न कर सकता था। यह भी जानता था कि मान सम्मान उसी वक्त तक है जब तक किसी के सामने मदद के लिए हाथ न फैलाता। यह आन टूटी फिर कोई बात भी नहीं पूछेगा। कोई ऐसा भला मानस न दिखता था जो सब कुछ बिना कहे ही जान जाए और उसे कोई अच्छी सी जगह दिला दे। आज उसका चित्त बहुत खिन्न था। मित्रों पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि एक एक को फटकारे और आए हुए द्वार से दूतकार दे। अब किसी ने शतरंज खेलने को बुलाया तो ऐसी फटकार सुनाऊंगे कि बच्चा याद करे। मगर वह जरा गौर करता तो उसे मालूम हो जाता कि इस विषय में मित्रों का उतना दोष न था जितना खुद उसका। कोई ऐसा मित्र न था जिससे उसने बढ़ चढ़कर बातें न की हो। यह उसकी आदत थी। घर की असली दशा को वह सदैव बदनामी की तरह छिपाता रहा और यह उसी का फल था कि इतने मित्रों के होते हुए भी वह बेकार था। वह किसी से अपनी मनोव्यथा न कह सकता था और अपनी मनोव्यथा सांस की भांति अंदर घुटकर असह्य हो जाती। घर आकर मुंह लटकाए हुए बैठ गया। रामेश्वरी ने पानी लाकर रख दिया और पूछा, आज तुम दिन भर कहाँ रहे? लो हाथ मुंह धो ढालो। रामा ने लोटा उठाया ही था कि जालपा ने आकर उग्र भाव से कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो इसी वक्त। रामा ने लोटा रख दिया और उसकी ओर ताकने लगा, मानो उसकी बात समझ में न आई हो। रामेश्वरी बोली, भला इस तरह कहीं बहु बेटियां विदा होती है? कैसी बात कहती हो बहू? जालपा, मैं उन बहु बेटियों में नहीं हूँ। मेरा जिस वक्त जी चाहेगा जाऊंगी, जिस वक्त जी चाहेगा आऊंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। जब यहाँ कोई मेरी बात नहीं पूछता तो मैं भी किसी को अपना नहीं समझती। सारे दिन अनाथों की तरह पड़ी रहती हूँ, कोई झांकता तक नहीं। मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसका पिंजरा दाना पानी रखकर बंद कर दिया जाए। मैं भी आदमी हूँ। अब इस घर में मैं क्षण भर न रुकूंगी। अगर मुझे कोई भेजने न आएगा तो अकेली चली जाऊंगी। राह में कोई भी भेड़िया नहीं बैठा जो मुझे उठा ले जाएगा, और उठा भी ले जाए तो क्या गम, यहाँ कौन सा सुख भोग रही हूँ। रमा ने सावधान होकर कहा, आखिर कुछ मालूम भी तो हो क्या बात हुई। जालपा, बात कुछ नहीं हुई, अपना जी है, यहाँ नहीं रहना चाहती। रमा, भला इस तरह जाओगी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हें यह भी तो सोचो। जालपा, यह सब सोच चुकी हूँ और ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। मैं जाकर अपने कपड़े बांधती हूँ और इसी गाड़ी से जाऊँगी। यह कहकर जापला ऊपर चली गई। रमा भी पीछे पीछे यह सोचता हुआ चला, इसे कैसे शांत करूँ। जापला अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटने लगी कि रमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम जो इस वक्त जाने का नाम लो। जापला ने त्योरी चढ़ाकर कहा, तुम्हारी कसम की हमें कुछ परवाह नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और बिछावन लपेटने लगी। रमा खिसियाना सा होकर एक किनारे खड़ा हो गया। जापला ने बिस्तर बंद से बिस्तर को बांधा और फिर अपने संदूक को साफ करने लगी, मगर अब उसमें वह पहले से तत्परता न थी। बार बार संदूक बंद करती और खोलती। वर्षा बंद हो चुकी थी, केवल छत पर रुका हुआ पानी टपक रहा था। आखिर वह उसी बिस्तर के बंडल पर बैठ गई और बोली, तुमने मुझे कसम क्यों दिलाई? रमा के हृदय में आशा की गुदगुदी हुई। बोला, इसके सिवा मेरे पास तुम्हें रोकने का और क्या साधन था? जालपा, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊं? रमा, तुम ऐसे मनहूस शब्द क्यों मुंह से निकालती हो? मैं तो चलने को तैयार हूं, न मानोगी तो पहुंचाना ही पड़ेगा। आओ जाओ, मेरा ईश्वर मालिक है, अगर कम से कम बाबूजी और अम्मा से पूछ लो। बुझती हुई आग में तेल पड़ गया। जापला ताड़कर बोली, वह कौन होते हैं जो उनसे पूछूं? रमा, कोई नहीं होते। जापला, कोई नहीं, अगर कोई होते तो मुझे यूं न छोड़ देते। रुपये रखते हुए कोई अपने प्रियजनों का कष्ट नहीं देख सकता। ये लोग क्या मेरे आंसू न पोंछ सकते थे? मैं दिन के दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ, कोई झूठों भी नहीं पूछता। मोहल्ले की स्त्रियाँ मिलने आती है, कैसे मिलूँ? यह सूरत तो मुझसे नहीं दिखाई जाती, न कहीं आना जाना, न किसी से बात, न किसी से चीत। ऐसे कोई कई दिन रह सकता है? मुझे इन लोगों से अब आशा नहीं रही। आखिर दो लड़के और भी तो हैं, उनके लिए भी कुछ जोड़ेंगे कि तुम ही को दे देंगे। रामा को बड़ी बड़ी बातें करने का फिर अवसर मिला। वह खुश था कि इतने दिनों के बाद आज उसे प्रसन्न करने का मौका मिला। बोला, प्रिय तुम्हारा ख्याल बहुत ठीक है, जरूर यही बात है, नहीं तो 2500-3000 उनके लिए क्या बड़ी बात थी? 50,000 बैंक में जमा है, दफ्तर तो केवल दिल बहलाने जाते हैं। जालपा, मगर है मक्खी चूस पल्ले सिर के। रमा, मक्खी चूस न होते तो इतनी संपत्ति कहाँ से आती? जापला, मुझे तो किसी का परवाह नहीं है जी। हमारे घर किस बात की कमी है? दाल रोटी वहाँ भी मिल जाएगी, दो चार सखी सहेलियाँ, खेत खलियान है, बाग बगीचे हैं, जी बहलता रहेगा। रमा, और मेरी क्या दशा होगी जानती हो? घुल घुल कर मर जाऊँगा। जब से चोरी हुई है मेरे दिल पर जैसी गुजरती है वह दिल ही जानता है। अम्मा और बाबूजी से एक बार नहीं लाखों बार कहा, जोर देकर कहा कि दो चार चीज़ें बनवा ही दीजिए, पर किसी के कान पर जूं तक न रहेंगी। न जाने क्यों मुझसे आँख फेर ली है। जालपा, जब तुम्हारी नौकरी कहीं लग जाए तो मुझे बुला लेना। रमा, तलाश कर रहा हूँ, जल्द मिलने वाली है, हजारों बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात है, नौकरी मिलते क्या देर लगती है। हाँ, जरा अच्छी जगह चाहता हूँ। जालपा, मैं इन लोगों का रुख समझती हूँ, मैं भी यहाँ अब दावे के साथ रहूँगी। क्यों, किसी से नौकरी के लिए कहते नहीं हो? रमा, शर्म आती है किसी से कहते हुए। जालपा, इसमें शर्म की कौन सी बात है? कहते शर्म आती तो खत लिख दो। रमा उछल पड़ा, कितना सरल उपाय था और अभी तक वह सीधी सी बात उसे न सूझी थी। बोला, हाँ यह तुमने बहुत अच्छी तरकीब बतलाई, कल जरूर लिखूंगा। जालपा, मुझे पहुँचा कर आना तो लिखना, कल थोड़े ही लौट आओगे। रमा, तो तुम क्या सचमुच जाओगी? तब मुझे नौकरी मिल चुकी और मैं खत लिख चुका, इस वियोग के दुख में मैं बैठ कर रोऊंगा कि नौकरी ढूंढूंगा? नहीं, इस वक्त जाने का विचार छोड़ो। नहीं, सच कहता हूँ, मैं कहीं भाग जाऊँगा, मकान का हाल देख चुका, तुम्हारे सिवा और कौन बैठा है जिसके लिए यहाँ पड़ा सड़ा करूँ? हटो, जरा मैं बिस्तर खोल लूँ। जालपा ने बिस्तर पर से जरा खिसक कर कहा, मैं बहुत जल्द चली आऊँगी, जब तुम गए और मैं आई। रामा ने बिस्तर खोलते हुए कहा, नहीं जी, माफ़ कीजिए, इस धोखे में नहीं आता। तुम्हें क्या, तुम तो सहेलियों के साथ बिहार करोगी, मेरी खबर तक न लोगी और यहाँ मेरी जान पर बन आवेगी, इस घर में कैसे कदम रखा जाएगा? जापला ने एहसान जताते हुए कहा, आपने मेरा बंधा बंधाया बिस्तर खोल दिया, नहीं तो आज कितने आनंद से घर पहुँच जाती। शहजादी सच कहती थी, मर्द बड़े टोनहे होते हैं। मैं आज पक्का इरादा कर लिया था कि चाहे ब्रह्मा भी उतर आवे पर मैं नहीं मानूंगी, पर तुमने 2 मिनट में ही मेरे समूचे मनसूबे चौपट कर दिए। कल खत लिखना जरूर, बिना कुछ पैदा किए अब निर्वाह नहीं है। रमा, कल नहीं, मैं इसी वक्त जाकर 2-3 चिट्ठियां लिखता हूँ। जपला, पान तो खाते जाओ। रामानाथ ने पान खाया और मर्दाना कमरे में आकर खत लिखने बैठे, मगर फिर कुछ सोचकर उठ खड़े हुए और एक तरफ सुखो चल दिए। स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे हाथ नाथ, न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के बारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे, शतरंज की एक बाजी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उसे प्रेमालाप करेगा कि बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलाए, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा। रह गए, कहाँ जाए, सिनेमा ही देखावे, किसी तरह समय तो कटेगा। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुँचे। और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल ही भूल गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे, प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रामा, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखा है, नहीं तो 200 के मत थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमा, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा, मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं, बाबूजी सुनते ही नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हज़ार रुपये खर्च किए, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हज़ार रुपये होंगे तो, अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा क्या, 50 रुपया होता ही क्या है। रमा, मैं तो मुसीबत में फंस गया, अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए कि कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मसले पे सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमा, मेरा तो इस वक्त खेलने का जी नहीं चाहता, जब तक यह प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मुहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार खेल लो, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमा, जरा भी जी नहीं चाहता, मैं जानता था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, तो मैं विवाह के नज़दीक ही न जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो, आप ही आप जी लग जाएगा, जरा अक्ल की गांठें तो खुले। बाजी शुरू हुई, कोई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमा, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी, शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खान साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता, कई बार बचा चुका हूँ, सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें, बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई बेईमानी मत करो, मैं तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमा, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए, मेरी तो राय है कर लो। रमा, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है, मियाँ ने तो उस जगह पर रहते हुए लड़कों को MA MLLB करा लिया, 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियाँ की शादी अच्छे घरों में की। हाँ जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमा, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। रमेश, बहुत खराब है, मगर बाल बच्चों के आदमी क्या करे, 30 रुपये में गुजर हो नहीं सकती, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी हैं, कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह आदमी क्या कर सकता है। जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलस मनी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद न होगी। यह रोटी दाल घी दूध तो भी खाते हैं, फिर एक तो 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हैं? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझसे बातों में लगाकर सारे मुहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जवान पकड़ लीजिए, यह लीजिए सह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमा, आप तो दो ही बातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मत दिया करते थे, आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैं एक मंत्र सिद्ध किया, क्या मजाल की कोई मात दे सके फिर सह। रमा, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए, सह और मात। रमा, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 माते न दी हो तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे, हिम्मत हो तो अभी सही। रमा, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, चलो दिन फिर खाना खा लें, तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चित होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएगा, इंतजाम न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बजे रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही, तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमा, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बर्फ रखी हुई है, 5-5 बाजियां खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं जीत मेरी ही होगी, मगर जब चौथी बाजी हार गए तो उन्हें यह विश्वास जाता रहा, उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमा, क्यों क्यों, 5 बाजियां पूरी न कर लीजिए। रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था, आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, पूजा घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़ कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमा, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊँगा? रमा, तो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुँह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमा, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमा, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधे घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमेश ने 1 मिनट में मुँह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमा, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियाँ दिलवाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमेश, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या, तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी, महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों बीसियों सिफारिश लानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी, क्या नौकरी मिलना आसान है? रमा, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है, खुशामदे कौन करेगा, पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी, डांट तो नहीं बताएंगे। रमेश बुरी तरह डांटता है रमेश बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमा, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डर का कोई कारण नहीं है, यह मैं सब ठीक कर दूंगा। रमा, आप तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए, 10 रुपये पर नौकर हुआ था। रमा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियां में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंचे। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिर आए थे। पानी आया ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उसने रुका न गया। होते ही हाथे के बाहर भी नहीं निकल पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक क्षण में वह लथपथ हो गया, फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनने का आनंद इस भगोड़े की क्या परवाह कर सकता है। सॉरी, नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दौड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपये थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितनी मासिक बचत हो जाने से वह जालपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा के गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंचा गया। जालपा ने देखते ही बोली, यह भींग कहाँ गए, रात कहाँ गायब थे? रमा, इसी नौकरी के फिक्र में पड़ा हुआ हूँ, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई है। जलपा ने उछलकर पूछा, सच कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी, स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जलपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमा, मिल तो सकती थी 100 रुपये की भी, पर यहाँ रोब है और आराम है, 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं है कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकम मिलेगी और वह खुशी से गले लगावेंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं, महाजनों का एक एक मिनट एक एक असरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम करवाने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जापला संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमा, वह तो करूंगा ही। जालपा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमा, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे मैं 20 ही बतलाऊंगा। जलपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना, ऊपर से आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिया ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा, उसके नाम एक पार्सल आया हुआ था, महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश 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 घर में आए और जालपा के हाथ में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार के एक डिबिया निकली, उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज़ें तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जापला ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं का हार है, मैं इसे न लूँगी, अभी डाक का पता हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वह नाराज न होगी। जालपा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी, मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझे दया आई है, ये उस वक्त दया न आई थी जब मैं उसके घर से विदा हुई थी, उनके गहने उन्हें मुबारक हो, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़े पहनने के दिन हैं, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जालपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हारे हार रख लेना चाहिए, तुम्हें यह हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि नहीं दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो उन्हें गहनों के साथ भी यह भी चला जाता। जालपा, मैं इसे नहीं लूँगी, यह निश्चय है। रमा, आखिर क्यों? जालपा, मेरी इच्छा। रमा, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जालपा रूंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही है। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि वह वापस आकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाला का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूँगी। जब दिल पर जबर करके दुनिया की लाज से किसी के धिक्कारने से दिया हो तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी का दान नहीं लूंगी, चाहे वह माता ही क्यों न हो। माता के प्रति जापला का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया और चरपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दूँ, कम से कम उनसे तो पूछ लेना ही चाहिए। जापला ने हार उनके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब तुम मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों को भी खातिर हो जाएगी। जापला ने कठोर नेत्रों से देख कर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आवेगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया। रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे उतरा। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हो तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही वह इतनी जल्दी चेतेगा इसकी उन्हें आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से काम करोगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराए पैसे को हराम समझना। रमा के जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश अपने ही लिए रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इतना बेहाया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 20-30 रुपये की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? यह तो 30 रुपये की, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमा, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल छह महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दया, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा, दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपये कुछ बच रहे थे, कुछ मित्रों से उधार ले लिए। वह साहबी ठाठ बनाकर सारे दफ्तर पर रोब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं, महाजन लोग उसका ठाठ बाट देख कर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती जब अच्छा ठाठ हो। सड़क के चौकीदार को एक पैसा काफ़ी समझता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसे एक पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण करने वाले बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपया देना ही पड़ता है। भेख और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान ही कुछ और हो गई। चपरासियों ने झुकझुक कर सलाम किए। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने आया तो देखा एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। सामने गाड़ियों, ठेलों और इक्कों का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू से जाकर बोला, क्या मुझे इसी मैली दरी पर बिठाना चाहते हैं? एक अच्छी सी मेज और कई कुर्सियां भिजवाइए और चपरासियों को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने न आने पावे। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सियां भिजवा दी। रमा शांत से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुंशी जी उसकी उच्छलिंगता पर दिल में हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है, चार्ज दे दिया। चार्ज में था ही क्या, केवल आज की आमदनी का हिसाब समझा देना था। किस जिंस पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद ही यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह वह 30 साल से बराबर बैठते चले आते थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया था। उसे छोड़ते हुए क्यों न दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खां साहब उनकी इस नम्रता से प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा कर बोले, हर एक बिल्टी पर एक आना बंधा हुआ है, खुली हुई बात है, लोग शौक से देते हैं। आप अमीर आदमी हैं, मगर रस्म न बिगाड़िएगा। एक बार कोई रस्म टूट जाती है तो उसका बंधना मुश्किल हो जाता है। इस एक आने में आधा चपरासियों का हक है। जो बड़े बाबू पहले थे वह 25 रुपये महीना लेते थे, मगर यह कुछ नहीं लेते। रामा ने अरुचि प्रकट करते हुए कहा, गंदा काम है, मैं सफाई से करना चाहता हूँ। बूढ़े मियाँ ने हंसकर कहा, अभी गंदा मालूम होता है, लेकिन फिर इसी में मज़ा आएगा। खां साहब को विदा करके रामा अपनी कुर्सी पर आ बैठा और चपरासी से बोला, इन लोगों से कहो बरामदे के नीचे चले जाएं, एक एक करके नंबरवार आएं, एक कागज पर सबके नाम नंबरवार लिख लिया करो। एक बनिया जो 2 घंटे से खड़ा था खुश होकर बोला, हाँ सरकार, यह बहुत अच्छा होगा। रमा, जो पहले आवे उसका काम पहले होना चाहिए, बाकी लोग अपना नंबर आने तक बाहर रहें। यह नहीं कि सबसे पीछे वाले शोर मचाकर पहले आ जाएं और पहले वाले मुंह ताकते रहें। कई व्यापारियों ने कहा, हाँ बाबूजी, यह इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, भड़बड़ में देरी हो जाती है। इतना नियंत्रण रमा का रोब जमाने के लिए काफ़ी था। बनिक समाज में आज ही उसके रंग ढंग की आलोचना और प्रशंसा होने लगी। किसी बड़े कॉलेज के प्रोफेसर को इतनी ख्याति उम्र भर न मिलती।
2-4 दिन के अनुभव से ही रमा को सारे दांव घात मालूम हो गए। ऐसी ऐसी बातें सूझ गईं जो खां साहब को ख्वाब में भी न सूझी थी। माल की तौल, गिनती और परख में इतनी धांधली थी जिसकी हद नहीं। जब इस धांधली से व्यापारी लोग सैकड़ों की रकम डकार जाते हैं तो रमा बिल्टी पर एक आना लेकर ही क्यों संतुष्ट हो जाए, जिसमें आधा आना चपरासियों का है। माल की तौल और परख में दृढ़ता से नियमों का पालन करके वह धन और कीर्ति दोनों ही कमा सकता है। यह अवसर वह क्यों छोड़ने लगा, विशेषकर जब बड़े काबू उसके गहरे दोस्त थे। रमेश बाबू इस नए रंगरूट की कार्यपटुता पर मुग्ध हो गए। उसकी पीठ ठोंक कर बोले, कायदे के अंदर रहो और जो चाहो करो, तुम पर आंच तक ना आने पाएगी। रमा की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी, आमदनी के साथ प्रभाव भी बढ़ा। सूखी कलम घिसने वाले दफ्तर के बाबुओं को जब सिगरेट, पान, चाय या जलपान की इच्छा होती तो रमा के पास चले जाते। इस बात की गंगा में सभी हाथ धो सकते थे। सारे दफ्तर में रमा की सराहना होने लगी। पैसे को तो वह ठीक रहा समझता है, क्या दिल है कि वह, और जैसा दिल है वैसी ही जबान भी। मालूम होता है नस नस में शराफत भरी हुई है। बाबुओं का जब यह हाल था तो चपरासियों और मुहरीरों का पूछना ही क्या, सब के सब रमा के बिना दामों गुलाम थे। उन गरीबों की आमदनी ही नहीं, प्रतिष्ठा भी खूब बढ़ गई थी। जहां गाड़ीवान तक फटकार दिया करते थे, वहां अब अच्छे अच्छे की गर्दन पकड़कर नीचे धकेल देते थे। रमानाथ की तूती बोलने लगी, मगर जालपा की अभिलाषाएं अभी एक भी पूरी ना हुई। नागपंचमी के दिन मोहल्ले की कई उबतियाँ जालपा के साथ कजरी खोलने आई, मगर जालपा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली। भादों में जन्माष्टमी का उत्सव आया, पड़ोसी में एक सेठ जी रहते थे, उनके यहाँ बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। वहाँ से सास और बहू को बुलावा आया, रामेश्वरी की चर्चा न की, पर उसका यह एकांत प्रेम उसके आचरण से उत्तेजक था। इससे ज़्यादा उत्तेजक वह पुराना सूची पत्र था जो एक दिन रमा कहीं से उठा लाया था। इससे भांति भांति के सुंदर आभूषणों के नमूने बने हुए थे, उनके मूल्य भी लिखे हुए थे। जालपा एकांत में इस सूची पत्र को बड़े ध्यान से देखा करती। रमा को देखते ही वह सूची पत्र छिपा लेती थी। इस हार्दिक कामना को प्रकट करके वह अपनी हंसी न उड़वाना चाहती थी। रमा आधी रात के बाद लौटा तो देखा जालपा चारपाई पर खड़ी है। हंसकर बोला, बड़ा अच्छा गाना हो रहा था, तुम नहीं गई, बड़ी गलती की। जलपा ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर ना दिया। रमा ने फिर कहा, यहाँ अकेले बड़े बड़े तुम्हारा यहाँ पड़े पड़े तुम्हारा जी घबराता रहा होगा। जालपा ने तीव्र स्वर में कहा, तुम कहते हो मैंने गलती की, मैं समझती हूँ मैंने अच्छा किया, वहाँ किसके मुंह में कालिख लगती। जालपा ताना तो न देना चाहती थी, पर रमा की इन बातों ने उसे उत्तेजित कर दिया। रोष का एक कारण यह भी था कि उसे अकेली छोड़कर सारा घर उत्सव देखने चल गया। अगर उन लोगों के हृदय होता तो क्या वहां जाने से इनकार न कर देते। रमा ने लज्जित होकर कहा, कालिख लगने की कोई बात न थी, सभी जानते हैं कि चोरी हो गई है, और इस जमाने में 2-4 हज़ार के गहने बनवा लेना मुंह का कौर नहीं है। चोरी का शब्द जवान पर लाते हुए रमा का हृदय धड़क उठा। जलपा पति की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर रह गई, और कुछ बोलने से बात बढ़ जाने का भय था, पर रमा को उसकी दृष्टि से ऐसा भासित हुआ मानो उसे चोरी का रहस्य मालूम है, और वह केवल संकोच के कारण उसे खोलकर नहीं कह रही है। उसे उस स्वप्न की बात भी याद आई जो जालपा ने चारों चोरी की रात को देखा था। वह दृष्टि बाण के समान उसके हृदय को छेदने लगी। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हुआ, इस दृष्टि में रोष के सिवा और कोई भाव नहीं है। मगर वह कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो गई। उसका चुप हो जाना ही गजब था। अपने मन का संशय मिटाने और जालपा के मन की था लेने के लिए रमा ने मानो डुब्बी मारी। यह कौन जानता था कि डोली से उतरते ही यह विपत्ति तुम्हारा स्वागत करेगी। जालपा आंखों में आंसू भरकर बोली, तो मैं तुमसे गानों के लिए रोती तो नहीं हूँ। भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, आगे भी वही होगा जो लिखा है। जो औरतें गहने नहीं पहनती क्या उनके दिन नहीं कटते। इस वाक्य ने रमा का संशय तो मिटा दिया, पर इसमें जो तीव्र वेदना छिपी हुई थी वह उससे छिपी न रही। इन तीन महीनों में बहुत प्रयत्न करने पर भी वह 100 रुपये से अधिक संग्रह न कर सका था। बाबू लोगों के आदर सत्कार में उसे बहुत कुछ गलाना पड़ता था, मगर बिना खिलाए पिलाए काम भी तो न चल सकता था। उसके सभी दुश्मन हो जाते और उसे उखाड़ने की घातें सोचने लगते। मुफ्त का धन अकेले नहीं हजम होता, यह वह अच्छी तरह जानता था। वह स्वयं एक पैसा भी व्यर्थ खर्च न करता। चतुर व्यापारी की भांति वह जो कुछ खर्च करता वह केवल कमाने के लिए। आश्वासन देते हुए बोला, ईश्वर ने चाहा तो एक महीने में कोई चीज बन जाएगी। जालपा, मैं उन स्त्रियों में नहीं हूँ जो गहनों पर जान देती हैं। हाँ, इस तरह किसी के घर आते जाते शर्म आती ही है। रमा की चित्त ग्लानि से व्याकुल हो उठा। जालपा के एक एक शब्द से निराशा टपक रही थी। इस अपार वेदना का कारण कौन था? क्या यह भी उसी का दोष न था कि इन 3 महीनों में उसने कभी गहनों की चर्चा नहीं की? जालपा यदि संकोच के कारण उसकी चर्चा न करती थी तो रमा को उसके आंसू पोंछने के लिए, उसका मन रखने के लिए क्या मौन के सिवा दूसरा उपाय न था? मोहल्ले में रोज ही एक न एक उत्सव होता रहता, रोज ही पास पड़ोस की औरतें मिलने लग आती, बुलावे भी रोज आते ही रहते हैं। बेचारी जालपा कब तक इस प्रकार आत्मा का दमन करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुढ़ती रहेगी। हंसने बोलने को किसका जी नहीं चाहता, कौन कैदियों की तरह अकेला पड़ा रहना पसंद करता है। मेरे ही कारण तो इसे यह भीषण यातना सहनी पड़ रही है। उसने सोचा, क्या किसी सराफ से गहने उतार नहीं लिए जा सकते? कई बड़े सराफों में उसका परिचय था, लेकिन उनसे यह बात कैसे कहता? कहीं वे इनकार कर देते तो, यह संभव है बहाना करके टाल दे। उसने निश्चय किया कि अभी उधार लेना ठीक न होगा, कहीं वादे पर रुपए न दे सका तो व्यर्थ में थुक्का फजीहती होगी, लज्जित होना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और धैर्य से काम लेना होगा। सहसा उनके मन में आया, इस विषय में जालपा की राय लूं, देखूं वह क्या कहती है। अगर इसकी इच्छा हो तो किसी शराब से वादे कर चीजें ले ली जाए, मैं इस अपमान और संकोच को सह लूंगा। जालपा को संतुष्ट करने के लिए उसके गहनों को उसे कितनी फिक्र है। बोला, उस तुमसे एक सलाह करना चाहता हूँ, पूछूं या न पूछूं? जालपा को नींद नहीं आ रही थी, आंखें बंद किए बोली, अब सोने दो भाई, सवेरे उठना है। रमा, अगर तुम्हारी राय हो तो किसी शराब से वादे पर गहने बनवा लाऊं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जालपा की आंखें खुल गई। कितना कठोर प्रश्न था, किसी मेहमान से पूछना, कहिए तो आपके लिए भोजन लाऊं, कितनी बड़ी अशिष्टता है। इसका तो यही आशय है कि हम मेहमान को खिलाना नहीं चाहते, रमा को चाहिए था कि चीजें लाकर जालपा के सामने रख देता। उसके बार बार पूछने पर भी यही कहना चाहिए था कि दाम लेकर देकर लाया हूँ, तब वह अलबत्ता खुश होती। इस विषय में उसकी सलाह लेना घाव पर नमक छिड़कना था। रमा की ओर अविश्वास की आंखों से देखकर बोली, मैं तो गहनों के लिए इतनी उत्सुक नहीं। रमा, नहीं यह बात नहीं, इसमें क्या हर्ज है कि किसी सराफ से चीजें ले लूं, धीरे धीरे उसका रुपये चुका दूंगा। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मेरे लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं, मैं वैश्या नहीं हूं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना रास्ता लूं। तुम्हें तुम्हारे साथ जीना और मरना है, अगर मुझे सारी उम्र बेगहनों के रहना पड़े तो भी मैं कर्ज लेने को ना कहूंगी। औरतें गहने की इतनी भूखी नहीं होती, घर के प्राणियों को संकट में डालकर गहने पहनने वाले दूसरी होंगी। लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि जगह बड़ी आमदनी की है, मुझे तो कोई विशेष बचत दिखाई नहीं देती। रमा, बचत तो जरूर होती और अच्छी होती, लेकिन जब अहलकारों के मारे बचने भी पाए, सब शैतान सिर पर सवार रहते हैं। मुझे पहले न मालूम था कि यहाँ इतने प्रेतों की पूजा करनी होगी। जालपा, तो अभी कौन सी जल्दी है, बनते रहेंगे धीरे धीरे। रमा, खैर तुम्हारी सलाह है तो एक आध महीने और चुप रहता हूँ, मैं सबसे पहले कंगन बनवाऊंगा। जालपा ने गदगद होकर कहा, तुम्हारे पास अभी इतने रुपए कहाँ होंगे। रमा, इसका उपाय तो मेरे पास है, तुम्हें कैसे कंगन पसंद है। जालपा अब अपनी कृत्रिम शयम को न निभा सकी, अलमारी में से आभूषणों का सूचीपत्र निकालकर रमा को दिखाने लगी। इस समय वह इतनी तत्पर थी मानो सोना आकर रखा हुआ है, सुनार बैठा हुआ है, केवल डिजाइन ही पसंद करना बाकी है। उसने सूची के दो डिजाइन पसंद किए, दोनों वास्तव में बहुत ही सुंदर थे, पर रमा उनका मूल्य देखकर सन्नाटे में आ गया। एक एक 1000 का था, दूसरा 800 का। रमा, ऐसी चीजें तो शायद यहाँ बन भी न सके, मगर कल मैं जरा सराफे की सैर करूंगा। जालपा ने पुस्तक बंद करते हुए करुण स्वर में कहा, इतने रुपए न जाने तुम्हारे पास कब तक होंगे। बनेंगे बनेंगे, नहीं कौन कोई गहनों के बिना मरा जाता है। रमा को आज इसी उधेड़बुन में बड़ी रात तक नींद न आई। ये जड़ाऊ कंगन इन गोरी कलाइयों पर कितने खिलेंगे, यह मोह स्वप्न देखते देखते उसे न जाने कब नींद आ गई।